अब आप देखिए कि अब ये जो आयतें हैं, अगली आयतें आयत नंबर 27 से अब ये जो शुरू हो रही हैं, तो यहां से फिर अल्लाह ताला जो है वो तजाद को बता रहे हैं, रंगारंगी को बता रहे हैं दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर जो अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ तरह की चीजें पैदा की हैं, तो अल्लाह ताला ये बात बताना चाहते हैं कि ये सारा बनाने वाला कौन है। ये जो दुनिया की, दुनिया में अल्लाह की जो निशानियां हैं इनको देखो फिर मुझे पालो, तो क्या करो, मेरा शुक्र क्यों नहीं अदा करते, क्यों नहीं तौहीद परस्त बन जाते। अलम तरा, क्या नहीं देखा तुमने, क्या नहीं देखा तुमने, अन्नल्लाह, ये के अल्लाह, अनजला मिनस समाई, उतारा आसमान से, नजला उतरना होता है और अनजला उतारना, के उतारा आसमान से मा अन पानी, लोगों क्या तुम देखते नहीं हो कि उसने जो है वो, किसने, अल्लाह ने आसमान से बारिश को नाजिल किया, आसमान से बारिश अल्लाह नाजिल करता है। अब एक पानी, एक पानी नाजिल करने वाला भी एक, अब उसकी कुदरत के नजारे तो जरा देखें, उसकी कुदरत के करिश्मे तो देखें, फाखरजना बही, फिर हमने निकाला इसके जरिए, खराजा नहीं है अखरजा है, हमने निकाला बही इस पानी के जरिए, क्या निकाला, समारातिन, समर की जमा है समारात, के तरह तरह के हमने जो थे वो फल निकाले, मुख्तलिफन, मुख्तलिफ, मुख्तलिफ अलवानुहा, रंग उनके, कहते हैं कि मुख्तलिफ, मुख्तलिफ के मानी क्या है, मुख्तलिफ के मानी भी तो यही है ना कि मुख्तलिफ, और कैसे मुख्तलिफ, रंगों में मुख्तलिफ, जायकों में मुख्तलिफ, टेस्ट में मुख्तलिफ, शक्ल में मुख्तलिफ, खासियतों में मुख्तलिफ, मुख्तलिफ मौसमों के मुख्तलिफ फल, तरह तरह के, अलवानुहा, और एक होता है सिबगा, सिबगा कौन सा रंग होता है, खुद चढ़ाया जाता है, लॉन कौन सा रंग होता है, कुदरती रंग, तो लॉन वाहिद है, अलवान उसकी जमा है, यहां ये दो मानी में इस्तेमाल हुआ है, एक है रंग, दूसरा है किस्म, और जो समारात हैं इनके रंग मुख्तलिफ हैं, और दूसरे मानी क्या है कि इनकी किस्में मुख्तलिफ हैं, रंग और किस्में जो हैं इनकी, जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं इनकी बहुत मुख्तलिफ हैं, हर किस्म की मखलूक में तनव्वो है, उनके अंदर जो है वो एक हुसन है। अब आप देख लीजिए कैसे है, यहां पे जो है फलों की बात हुई, फलों और फूलों को देखें, पौधों का जो फल होता है, फूल भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं और फ्रूट भी होता है ना, मसलन आप देखें, आप एक गुलाब को ही ले लें, जैसे जमीन में एक पानी से एक मिट्टी, एक मिट्टी में एक तरह का पानी जाता है, जो नबातात उगती है, शक्लें भी मुख्तलिफ, रंग भी मुख्तलिफ, मसलन आप गुलाब के फूल को देखें, हर गुलाब की डिफरेंट खुशबू है ना, साख्त और खुशबू में फर्क होता है, और रंग मुख्तलिफ है, सफेद भी है, गुलाबी भी है, सुर्ख भी है, पीला भी है, तरह तरह के, और रंग उनके मुख्तलिफ है, साइज मुख्तलिफ है, पत्ते मुख्तलिफ हैं, इसी तरह लाला के फूल को आप देख लें, चंबेली का मोतिये को देख लें आप, फिर आप इसी तरह नीलोफर का फूल है, सूरजमुखी का फूल है, इनको आप देख लें, तो रंगों का जो हुसन है उससे गुलदस्ता बनता है, इसी तरह आप खजूर को देख लें, अरबों के यहां खजूरें बहुत थी, तरह तरह की, तर हैं, खुश्क हैं, छोटी हैं, मोटी हैं, किसी की गुठली बड़ी है, किसी की छोटी है, सेब को आप देख लें, आम को देख लें, आम आप खाते हैं ना, और लोग आम खाते हैं और सौ उस पर बातें करते हैं कि ये फलाम है, इसकी ये खुशबू है, फलाम चाहिए, तो गोया के अल्लाह ताला ने जब फलों को, फूलों को, सब्जियों को इतनी खसूसियात दी हुई है, तो ये खुशनुमा मनाजिर, ये रंगारंगी, ये तनव्वो जो मखलूक के अंदर हुसन है उसका, ये किसने दिया, ये अल्लाह ताला ने दिया, और सिर्फ फूलों फलों सब्जियों की बात नहीं, वा मिनल जिबाली, और पहाड़ों में से, जबल की जमा पहाड़ है, जुदादुन जीन दाल, दाल से है, और जुदातुन की जमा है, ये लफ्ज असल में हिरनों और खचरों की पीठों पर जो मुख्तलिफ रंग होते हैं, धारियां सी नहीं बनी हुई होती, जो मुख्तलिफ रंग की धारियां होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह मुख्तलिफ रंगों के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, और कौन से रंगों के लिए, जैसे सिलों और चट्टानों के रंग, जैसे धारियों की कतारें हैं, जैसे पहाड़ों के अंदर जो मुख्तलिफ रंग पाए जाते हैं ना, तो धारियों की कतारें हैं, जैसे जानवरों की पीठों की, पीठों पर रंगों की धारियां होती है ना, तो पहाड़ों की पीठों पर, पहाड़ों के ऊपर भी रंगों की धारियां हैं। जुदत का लफ्ज रास्ते के लिए भी आता है। सैयद कुतुब शहीद की बड़ी मशहूर किताब है ज्यादा और मंजिल। ज्यादा के फिर मानी क्या हुए? रास्ता। और मंजिल क्या है? जहां आपको पहुंचना है। तो ज्यादा और मंजिल, तो ज्यादा रास्ते के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अब क्या है कि पहाड़ों पर जो है क्या होता है, पहाड़ के जुदादुन, जुदादुन रास्ते हैं, पहाड़ों में जो है कतात हैं, घाटियां हैं। और याद रखिएगा जुदत के लफ्ज के दो मानी हैं, एक है छोटा सा रास्ता और दूसरे इसके मानी है हिस्सा, पता, जमीन का जैसे एक टुकड़ा नहीं होता, उसके लिए भी आता है, छोटे से रास्ते के लिए भी आता है ये लफ्ज। तो पहाड़ों पर क्या है, जुदादुन रास्ते हैं, या फिर आप यूं कह सकती हैं कि पहाड़ों के जो कते हैं, पहाड़ों के जो हिस्से हैं, बीदुन सफेद है। बीद जो है वो किसे कहते हैं? अबियद होता है ना सफेद, तो अबियद सफेद है और यहां पे लफ्ज आया है बीत का। और बीत क्या है, ये भी सफेद, सफेद के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि मुअन्नस हो तो बेदा आता है, और ये जो बीद है ना ये जमा है, अबियद वाहिद है। फिर आया हुमरुन, हुमर जो है अहमर, अहमर इसका वाहिद है और सुर्ख के लिए आता है, हुमर जमा है। और हमरा अगर आएगा तो मुअन्नस है। तो ये जो पहाड़ों के ऊपर धारियां हैं, या जो पहाड़ों के जो रंग हैं, या पहाड़ों पर जो रास्ते हैं, सफेद भी हैं और सुर्ख भी हैं, यानी मुख्तलिफ हैं। अलवानुहा उनका रंग, लौन की जमा अलवान है। अलवान यहाँ पे दो मानी में है, एक है रंग और दूसरी है किस्म। वह गराबीबू, गिरबीबून की जमा है, गराबीब गैन राबा इसका रूट है, और ये गहरे रंग के लिए आता है और काले रंग के लिए लफ्ज आता है। भजंग, काला भजंग। अब आगे फिर सूद आ गया, और सूद का जो लफ्ज है ये काले के लिए आता है, अस्वद वाहिद है और सूद उसकी जमा है। तो अब जैसे आप किसी को नहीं कहते गोरा चिट्टा, काला स्याह, लंबा तड़ंगा, तो साथ में ये इसकी सिफत आई है गराबी बुसूदुन। तो अब आप देखें कि सूद ही काफी है कि पहाड़ों के अंदर काला रंग भी है, लेकिन ताकीद के लिए गराबीब भी आ गया कि गहरे स्याह काले पहाड़। तो अब गोया के पहाड़ों के भी मुख्तलिफ रंग है। और आप पहाड़ों को देखने का अगर आपको इत्तफाक हुआ हो, हमें एक दफा बहरेन से हमने सफर किया सऊदीया का, मक्का का और मदीना का, रियाज भी गए और मक्का मदीना गए, तो हम लोग जो है हमने अपनी गाड़ी से सफर किया, कार से, और रास्ते में बहुत बयाबान और पहाड़ी इलाका भी आता है, तो मुख्तलिफ रंग के पहाड़, दूर दूर तक बस सिर्फ पहाड़ हैं। कभी थोड़े थोड़े सुरख सुरख से नजर आते थे, कभी भूरे भूरे, कभी काले काले, कभी थोड़े से जैसे सफेदी माइल, तो तरह तरह के पहाड़ पहाड़ थे। और आप कहीं भी आप देख लें, अगर आपको सवात जाने का इत्तफाक हुआ हो, कश्मीर जाने का इत्तफाक हुआ, पहाड़ी इलाकों से आपको गुजरने का अगर इत्तफाक हो, तो आप जरूर इस आयत का मुशाहिदा कीजिएगा कि मुख्तलिफ रंग होते हैं। अच्छा, जिस तरह फलों फूलों सब्जियों के मुख्तलिफ रंग हैं, या पहाड़ों के मुख्तलिफ रंग हैं, वह मिन अन्नासी और इंसानों में से, व दवाबी और फिर जानवरों में से, वल अनामी और मवेशियों में से, मुख्तलिफुन अलवानहू उनके मुख्तलिफ रंग हैं। तो आप देख लीजिए, नास कहा तो नास के मानी क्या है, हर तरह के इंसान। और ये अगर आपने इंसानों के रंग देखने हो, जब तक आप पाकिस्तान में थी, हो सकता है आपको इस रंगारंगी का, जो इंसानों के रंग है, उसका अंदाजा ना हुआ हो। आप हरम में गए, आपने देखा सफेद भी हैं, हफ्शा के काले मुसलमान भी हैं, काले स्याह, और कभी कभी अगर आपको, जैसे आप यहाँ पे आके अमेरिका में, खासतौर पे न्यूयॉर्क के इलाके में जो ब्लैक रहते हैं, या फिर यहाँ पे भी बाज ब्लैक नजर आते हैं, उनकी काली रंगत उनके काले स्याह दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता बिल्कुल। अक्सर जब आप, मैं देखती हूँ तो गौर करती हूँ कि अल्लाह ताला तूने ये भी जो है वो बनाया, और ये भी तेरा नजारे हैं और कैसे हैं। और बाज लोगों के सफेद रंग होते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल सफेद। तो बहरहाल गोया के इंसानों में तरह तरह के लोग होते हैं ना, जिस तरह पहाड़ों में रंग मुख्तलिफ है ना, इंसानों के रंग भी मुख्तलिफ है। और आप देखें कि हमारा रंग जो है आमतौर पे गंदमी रंग, इसको क्या कहते हैं, ब्राउन है ना, तो ब्लैक है, ब्राउन है, और फिर उसके बाद व्हाइट है, वो येलो भी है, मुख्तलिफ तरह के रंग है ना। तो फिर इसके बाद इतना ही नहीं कि इंसान, वद्दवाबी, और दवाब जो है दाबा उनकी जमा है, और दाल बाबा इसका रूट है, इसके मानी क्या है, रींगने वाले। अब रींगने वालों में वैसे इंसान भी आ जाते हैं, अगर नास अलग से ना होता तो दवाब में नास भी शामिल है, लेकिन अब यहां इससे मुराद जो है क्या है कि पेट या पांव के बल चलने वाले, रींगने वाले मुराद है, कीड़े वगैरह, हशरात उल अर्द वगैरह, जो भी जमीन पर चलने वाले हैं, दो पांव से चलें या पेट से चलें, बंदर हो या फिर वो सांप हो, या जो भी हशरात उल अर्द है, क्योंकि आगे वाला नाम अलग कर दिया, नाम की जमा है, और इससे मुराद मवेशी लिए जाते हैं, दरिंदे इसमें शामिल नहीं होते हैं ना नाम अनाम में। और आमतौर पर इससे चार जानवर मुराद लिए जाते हैं, गाय, ऊंट, भेड़ और बकरी, मवेशी है ना, मवेशी। मुख्तलिफुन अलवानुहु, इनके रंग भी मुख्तलिफ है, इनकी किस्में भी मुख्तलिफ है। याद रखिएगा रंग के कितने मानी है, यहाँ पे दो मानी है, रंग भी मुख्तलिफ है, किस्में भी मुख्तलिफ है। फिर फरमाया कजालिक, इसी तरह कजालिक जो है, मुफस्सरीन ने कजालिक के भी दो मानी बताए हैं। अच्छा वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यहां तक पढ़ने के बाद आप कजालिक पर वक्फ कर लें, और जब आप कजालिक पर वक्फ कर लेंगे तो फिर इसके मानी क्या होंगे, इसके मानी ये हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाते हैं कि ये जितनी बातें जो हैं अल्लाह ताला ने, जितनी चीजों में इख्तलाफ है, जैसे दो दो रंग की हैं या मुख्तलिफ किस्मों की हैं, तो यहाँ पे आप वक्फ कर लें, तो इसी तरह इंसानों के जैसे रंग मुख्तलिफ हैं, इंसानों के दिल भी दो तरह के हैं। कैसे, कुछ सख्त हैं जो पहाड़ों की तरह सख्त हैं, और कुछ नरम हैं जो पिघल जाते हैं, जिनके अंदर अल्लाह की खशियत होती है ना। तो गोया के जमूर कहते हैं कि कजालिक पर अगर आप वक्फ कर लें तो पिछले मजमून से इसका रब्त है, मखलूकात मुख्तलिफ तरह की हैं, पहाड़ों के रंग मुख्तलिफ हैं, तो अल्लाह ताला ने जो है वो इंसानों को भी मुख्तलिफ बनाया है। और बाज ये कहते हैं कि कजालिक का ताल्लुक जो है वो अगली हिस्से से है, अगला हिस्सा क्या है, यानी पूरी बात करके अल्लाह ताला कहते हैं कजालिक। इसी तरह इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा, हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ उलमा डरते हैं, आलिम की जमा उलमा है, इल्म इसका रूट है, मानी है जानना, और जो इल्म वाले होते हैं वही इबादा होते हैं, अब्द बन जाते हैं, अमत बन जाते हैं, जब वो अब्द बनते हैं तो उनके अंदर होती है खशियत, यख्शल्लाह, अल्लाह का डर। अब आप देखें कि इल्म हासिल करने वालों की भी दो किस्में हैं, एक तो होते हैं जो इल्म हासिल करते हैं, तो कौन होते हैं, जैसे कि साइंसदान हैं, उनके पास जो है वो इल्म है दुनिया की मुख्तलिफ जबानों का, या आम जो दुनिया में बहुत ही आलिम किस्म के लोग हैं, दुनिया का इल्म है उनके पास, रियाजी का है या फिर टेक्नोलॉजी का है या कंप्यूटर का है, ये आम लोग हैं। लेकिन ये जो इल्म है, अगर ये जो इल्म है, इस इल्म से वो कर क्या रहे हैं, मादियत दुनिया, तो ये इल्म ऐसा है जिसने उनको अल्लाह का बंदा नहीं बनाया, तो ये इल्म मुराद नहीं है। फिर कौन सा इल्म है, वो इल्म जिसमें जो है वो खशियत हासिल हो, आलिमों की जो जो ईमान लाने वाले हैं ना, और फिर वो इल्म हासिल करते हैं, उनकी भी दो किस्में हैं। एक ऐसे आलिम होते हैं, इल्म उनके पास बहुत होता है लेकिन खशियत उनके अंदर नहीं होती, अल्लाह का डर और खौफ नहीं होता, उनके इल्म का मकसद दुनिया कमाना होता है। और फिर जो इल्म मतलूब है, जो आलिम मतलूब है, वो जिनके अंदर अल्लाह की खशियत हो, ये इल्म का आला दर्जा है। और बाज फिर ऐसे लोग भी होते हैं, वो वैसे वो इस्तिलाही मानों में आलिम नहीं होते, लेकिन अल्लाह की खशियत से वो माला माल होते हैं। और याद रखिएगा, इस्लाम ने इल्म को दुनिया और आखरत के इल्म में तकसीम नहीं किया। हर इल्म जिसके जरिए इंसान जो है वो अल्लाह की बंदगी कर सके, उसमें हिसाब का इल्म भी आ जाता है, उसमें दुनिया का सारा इल्म भी आ जाता है। दुनिया का इल्म हासिल करने से अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, दुनिया का इल्म हासिल करने के साथ साथ कुरान का इल्म हो, हदीस का इल्म हो, सीरत और प्यारे रसूल के उसवे का इल्म हो, और फिर इंसान अल्लाह का बंदा बन जाए, तो ये ज्यादा मतलूब है। दुनिया और दुनिया का इल्म और दीन का इल्म, कुरान इसको अलग अलग नहीं करता। दुनिया तो बल्कि दीनदार लोगों के लिए ज्यादा है, क्योंकि दुनिया के जरिए वो आखरत की कमाई करेंगे और आखरत को अपने लिए बना लेंगे। तो बेहतरीन आलिम वो है दुनिया का इल्म भी रखता है, और उसके बाद जो है वो कुरान हदीस और इस्लामी उलूम का इल्म भी रखता है, और उसके बाद फिर जो है वो क्या है कि अपने इल्म पर अमल करता है और उसके अंदर जो है वो खशियत पाई जाती है। तो असल बात क्या है जो बहुत अहम है, अल्लाह की खशियत। इन्नमा, इन्नमा जो है यहां पे इसके आमतौर पर इन्नमा कलमा हसर होता है ना, सिर्फ यही, लेकिन मुफस्सरीन कहते हैं कि इन्नमा यहाँ पे खुसूसियत बयान करने के लिए है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, हकीकत यह कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले जो हैं वो डरते हैं। तो आइए फिर इन सारी बातों की रोशनी में हम ये देखें कि आलिम है कौन। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में कहते हैं, आलिम वो शख्स है जो खलवत और जलवत में अल्लाह से डरे और जिस चीज की अल्लाह ने तरगीब दी है वो उसको मरगूब हो, और जो चीज अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा है उसको उससे नफरत हो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ने फरमाया, लैसल इल्मु बिकसरतिल हदीसी वलकिन्नल इल्मा अन कसरतिल खशियाती। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह क्या कहते हैं, बहुत सी अहदीस याद कर लेना या बहुत बातें कर लेना कोई इल्म नहीं, बल्कि इल्म वो है जिसके साथ अल्लाह का खौफ हो। तो जिसके पास जितना ज्यादा अल्लाह का खौफ है ना, उसी दर्जे वो आलिम है। अहमद बिन स्वाहले मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खशियत अल्लाह को कसरत रवायत और कसरत मालूमात से नहीं जांचा जा सकता, बल्कि इसको किताब व सुन्नत के इत्तबा से पहचाना जा सकता है। इसके क्या मानी है, अगर किसी शख्स के कोई किसी के पास जैसे हदीस का इल्म है, हदीसें उसको सारी आती हैं, हो सकता है सिहा सित्ता आती हो, बुखारी आती है, उसको रावी भी याद है, उसको बहुत सी मालूमात है, लेकिन उसके अंदर जो है वो किताब व सुन्नत का इत्तबा नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि कसरत इल्म नहीं कि रावी और हदीस वो फरफर सुना दे, असल बात क्या है, किताब व सुन्नत के इत्तबा से पहचाना जाएगा। शेख शहाबुद्दीन शहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत में इशारा पाया जाता है कि जिस शख्स में खशियत ना हो वो आलिम नहीं है। बाज़ वक़्त आप देखें कि बाज़ लोगों की तकरीरें होती हैं, बाज़ खतीबों के खिताब होते हैं, बड़े जबरदस्त होते हैं, लेकिन खशियत नहीं दिल में पैदा होती, नहीं दिल अपना नरम नहीं होता, या उस शख्स के अंदर भी अल्लाह का खौफ नहीं होता, या उसकी जिंदगी में इल्म तो है लेकिन इत्तबा नजर नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है फिर, हजरत रबी बिन अंस रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मल्लम यक्षा फलेसा बे आलिमिन, मल्लम यक्षा फलेसा बे आलिम, जो अल्लाह से नहीं डरता वो आलिम नहीं। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन्नमल आलिमु मन खशियल्लाह, आलिम तो सिर्फ वही है जो अल्लाह से डरे। साद बिन इब्राहिम से किसी ने पूछा, मदीना में सबसे ज्यादा अफकाह कौन है, अफकाह का मतलब क्या है, फकीह। फरमाया, अतकाहुम लिरब्बिही, जो अपने रब से सबसे ज्यादा डरने वाला है। फकीह कौन है, जो सबसे ज्यादा अपने रब से डरने वाला है। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु ने फकीह की ये तारीफ बताई, इन्नल फकीहा हकल फकीही, यानी मुकम्मल फकी वो फकी है, मल्लम यकनतन नासा मिन रहमतिल्लाह, युफ़नतुन्नासा मिन रहमतिल्लाह, जो रहमत से, अल्लाह की रहमत से लोगों को मायूस ना करे, नंबर एक। नंबर दो, और उनको गुनाहों की रुख्सत भी ना दे। अब ये नहीं कि फिर वो गुनाह करते जाए, नहीं, गुनाहों की रुख्सत भी ना दे। नंबर तीन, अल्लाह के अजाब से मुतमिन भी ना करे। नंबर चार, और कुरान को छोड़कर किसी दूसरी चीज की तरफ रगबत ना करे। फिर हजरत अली रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया, इस इबादत में कोई खैर नहीं है जो बे इल्म के हो, और इस इल्म में कोई खैर नहीं है जो बगैर समझ के हो, सूझबूझ के बगैर, और उस करात में कोई खैर नहीं है जो बगैर तदब्बुर के हो। तफसीर कुर्तबी में आप हजरत अली रजी अल्लाह का ये कौल जो है वो पढ़ सकती हैं कि यानी असल बात फिर क्या है कि आलिम जो है वो कौन है। तो इन सारी बातों से पता चलता है कि आलिम तो बहुत से हैं, अगर अल्लाह का खौफ नहीं है तो फिर आलिम नहीं है। और असल खशियत क्या है कि इल्म के साथ साथ फिर अमल भी हो। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और अब यहाँ पे मेरे और आपके लिए फिर अमल का असूल क्या निकला कि इल्म तो अब आपके पास ही बहुत है, आपने माशाल्लाह आप 22वें पारे पर हैं, खत्म करने के करीब हैं, है ना, इल्म हमारे पास अब बहुत है, लेकिन असल इल्म वाला कौन है जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का खौफ है। इन्नल्लाह अजीजुन गफूर, बेशक अल्लाह बड़ा जबरदस्त है और दरगुजर करने वाला है, गोया के ऐसा जबरदस्त कि नाफरमानों को पकड़ने पर आए तो कोई उसको बचा नहीं सकता और वो बचकर निकल नहीं सकते, और उसके अफो दरगुजर की शान के क्या कहने कि जिसकी वजह से वो मुझे और आपको भी दुनिया में मोहलत दिए चले जा रहा है। गफूर, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाही। अब मुफस्सरीन ये कहते हैं कि आलिम की मजीद तफसीर बताई जा रही है, और इस आयत में तीन बातें बताई गई हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यतलूना किताबल्लाही, वो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। यतलूना के अंदर दो मानी पाए जाते हैं, एक तिलावत करना और दूसरा तिलवन, अतात करना, इत्तबा करना। कि असल में इन्नल्लज़ीना और अल्लज़ीना से भी दो लोग मुराद हैं, एक तो आम सालहीन, आम नेक लोग, आम आलिम, और दूसरे कहते हैं उलमाए अहले किताब। बेशक इससे वो लोग मुराद हैं, यतलूना किताब अल्लाह, नंबर एक वो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नंबर दो वकाम सलाता और नमाज को कायम करते हैं। और नमाज को कायम करने से मुराद इनफरादी जिंदगी में खुद पढ़ना और इज्तमाही जिंदगी में उसको कायम करना, और जाहिरी और बातनी, और नमाज के जो फराइज वाजिबात शराइत हैं मुस्तहबात हैं सब चीजों के साथ नमाज को पढ़ना और सारी जिंदगी पढ़ना दवाम के साथ, तो वो नमाज को कायम करते हैं। नंबर तीन, वान फकू, और वो खर्च करते हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से जो हमने उनको दिया है। ये नहीं कहा कि सारा खर्च कर देते हैं, ये नहीं कहा कि वो उनका अपना होता है, मिम्मा उसमें से, रज़क़नाहुम, जो हमने उनको दिया है। और रिस्क जो है वो आपको पता ही है कि इससे मुराद जो है वो सिर्फ मालो दौलत नहीं है, बल्कि हर चीज जो अल्लाह ताला ने दी है हमें, इल्म भी है, सलाहियतें भी हैं, कुव्वतें भी हैं, जिंदगी भी है, सारी नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं उसमें से खर्च करते हैं, और खास तौर पर यहाँ पे रिज़्क़ को अल्लाह की राह में देना है। और कैसे खर्च करना है, सिर्रन वालानियतन, खुले भी और छुपे भी। तो छुपे जब इंसान अल्लाह के रास्ते में देता है तो इससे अमलों में इखलास पैदा होता है, और जब एलानिया देता है तो मकसूद तरगीब होती है। तो बाज़ औक़ात आप देखें कि नमाज जो है, नवाफिल की कसरत और खास तौर पर तहज्जुद, ये इखलास पैदा करने का जरिया है, लेकिन नमाज के लिए मीनारे पे चढ़कर माइक के पास मुअज्ज़िन अज़ान देता है कि आओ लोगों नमाज के लिए, तो नमाज क्या है, अलानिया भी है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बहुत दफा अलानिया इन्फाक की तरगीब दी, और लोगों ने अलानिया लाकर 500 घोड़े हैं और ऊंट हैं माल से भरे हुए हैं, और माल के ढेर लाकर जमा किए। तो दोनों तरह के अमलों की जरूरत होती है, कभी लोगों को तरकीब दिलाने के लिए, कभी अपने अंदर इखलास पैदा करने के लिए। तो बहरहाल सिर रहूं अलानियतन, यर्जूना, इस तीन अमल जो लोग करते हैं, और ये तीन चीजें दीन की हकीकी मुहाफिज हैं और खशियत इलाही की असल अलामत है। ये तीन चीजें, इनसे खशियत पैदा होती है, कुरान की तिलावत और अमल, نماز کو قائم کرنا انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تمام شرائط اور آداب کے ساتھ، اور تیسرا علانیہ اور جو ہے وہ خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں دینا۔ تو یہ تین کام جو لوگ کرنے والے ہیں، یہ ارجونا وہ امید رکھتے ہیں، راجیم وہ امید رکھتے ہیں تجارتن، اور تجارت جو ہے وہ لین دین کے لیے آتا ہے، ذوی الازداد میں سے ہے۔ لن تبور، کبھی وہ لوگ جو ہیں وہ تباہ نہیں ہوں گے، ہرگز تباہ نہیں ہوں گے۔ اور با ورا، ہلاک ہونا، تباہ ہونا، اور یہاں پہ جو ہے جو ہلاکت کا ذکر کیا جا رہا ہے، کون سی ہلاکت ہے؟ ایسی ہلاکت کو کہتے ہیں جیسے کسی کا مال کسی کے پاس ہے اور بہت زیادہ جو مال بیچنا ہے نا، بہت زیادہ مندہ پڑ جائے اور ہلاکت کے قریب انسان پہنچ جائے۔ یہاں پہ کسادا کے معنی میں ہے، یعنی آپ سوچیں کہ بور کا لفظ جو ہے کیا ہے؟ کسادا پھر فسادا، کسادا مال کا مندہ پڑنا، فسادا پھر تباہ ہو جانا۔ تو جیسے برف ہے، اب برف کوئی برف کا کاروبار کرتا ہے، اگر وقت پہ اس کی برف بکے گی نہیں تو کیا ہے کہ برف اس کی پگھل کر ختم ہو گئی، تو جتنے پیسوں سے اس نے برف خریدی تھی وہ پیسے بھی ضائع، نفع تو دور کی بات ہے۔ تو اصل بات ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ جو تجارت دنیا میں انسان کرتا ہے نا، اس میں نفع اور نقصان کا دونوں کا اندیشہ ہوتا ہے نا، لیکن یہ جو تجارت ہے نا کہ اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مار لگائے جا رہے ہیں، اللہ کی بندگی کی جا رہی ہے، اللہ کی خشیت ہے، یہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں ہرگز کوئی خسارہ نہیں ہے۔ کیوں خسارہ نہیں ہے؟ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ اللہ وفا کرے ان سے ان کی مزدوری کے بارے میں، ان کے اجر کے بارے میں۔ اور وفا کرنا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پورا پورا اس کا بدل دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر پورے پورے ان کو دے، پورے پورے دے، جیسا کیا ہے ویسا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کسی کا بدلہ اس کو پورا پورا دے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کرے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیکی کا بدلہ جو ہے، نیکی کا بدلہ ایک نیکی نہیں ہے، ایک حرف پڑتا ہے تو دس نیکیاں، ایک حرف دس نیکیاں، اور پھر 70 نیکیاں، اور پھر 700 گنا، ہے نا؟ تو کئی گنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل بات، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس تجارت میں جو کچھ اپنا سب کچھ لگائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اور کیوں نہ اللہ دے، اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور بھی ہے، اور صرف غفور ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی ذات جو ہے وہ شکور بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں غفور کا جو لفظ ہے، اب آپ دیکھیں کبھی اللہ تعالیٰ غفار کہتے ہیں، کبھی غفور کہتے ہیں، تو غفار کے معنی ہوتے ہیں گویا کہ اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ، بندے کتنے ہیں دنیا میں اور ان کے گناہوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی، تو غفار وہ ہے حد سے زیادہ تعداد میں جو گناہ ہیں نا ان کو معاف کر دے۔ اور غفور کے معنی کیا ہے؟ کہ مغفرت کا زائد از مقدار ہونا۔ غفور کے معنی کیا ہے؟ کہ غفور وہ ذات ہے کہ اس کی عطا اور بخشش جو ہے لا انتہا ہے۔ اور غافر کون ہے؟ غافر کا روٹ بھی یہی ہے نا، وہ بھی اللہ ہے جو محشر کے دن گناہوں پر پردہ ڈالے گا، ہے نا؟ تو یہاں پھر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے۔ جو بندوں، بعض کہتے ہیں کہ غفور کے معنی یہ ہیں کہ بندوں کے دل سے گناہوں کی یاد، ان کا دکھ اور گناہ کا احساس بھی ختم کر دے۔ آپ دیکھیں کہ گناہ کا احساس جب ہوتا ہے، گناہ جب یاد آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور سوچتے ہیں انسان کے کاش کی زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں چھپ جاتا، میں نے یہ جملہ کیوں بولا، میں نے یہ گناہ کیوں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا غفور ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اللہ اتنا بخشنے والا ہے، اتنا نوازنے والا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو جب معاف کرتا ہے تو انسان کے دل سے اس کے گناہ کی یاد بھی ہٹا دیتا ہے۔ اور غفار کے معنی یہ بھی ہیں کہ بندوں کے گناہوں کو ملائکہ کی آنکھوں سے بھی چھپا دے، بعض نے اس کا یہ معنی بھی بتایا۔ اچھا، یہ جو غفور لفظ ہے، یہ غفور لفظ جو ہے قرآن میں 92 دفعہ آیا ہے، रहीम के साथ 75 दफा, अजीज के साथ 2 दफा, आइन फा व अफू के साथ 5 दफा, शकूर के साथ 2 दफा, एक दफा यहाँ पे, हलीम के साथ 1 दफा और वदूद के साथ 1 दफा और जुर्रहमा के साथ 1 दफा और मुफरिद अकेला 5 दफा और कुल 92 दफा आया है। तो अल्लाह बहुत गफूर है, और गफूर ही नहीं उसके साथ शुकूर भी है, शुकूर। तो गफूर भी क्या है, मुबालगे का सीगा है यहाँ पे। गफूर और गफार दोनों गुफरान के वजन पर है, मुबालगे का सीगा है। शुक्र और शुकूर जो है ये भी मुबालगे का सीगा है। तो गोया के फिर शुकूर के मानी क्या है, अल्लाह ताला के लिए जब शुक्र लफ्ज आता है तो क्या मानी है कि वो बंदों के अमाले सवाले को कबूल करता है, बंदे की जो इबादत है ना, नंबर 2 उसे राजी हो जाता है, नंबर 3 वो अपने बंदों को नेकियों की तौफीक देता है, वो अपने इबादत को तौफीक शुक्र देता है, वो शुकूर है। फिर इसके एक मानी ये भी है, अल्लाह शुकूर है कि वो शुक्र पर मजीद नेमत अता करता है। तो फिर हमारा फिर इस नेमत का शुक्राना क्या है कि हम अल्लाह की शुक्रगुजारी करें, अल्लाह के हकूक को अदा करें और अल्लाह को राजी करने की फिक्र करें, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि इन्नहु गफूरुन शकूर। फिर इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और अहम हकीकत जो है उसकी तरफ इशारा करते हैं, उसको बताते हैं। और हकीकत क्या है कि आपको नबी ऐसे ही नहीं बनाया, वल्लज़ी औहैना इलैका, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात जिसने वही की आपकी तरफ, जो किताब हमने तुम्हारी तरफ वही की है, मिनल किताबी, किताब में से, है ना, किताब की जमा है कुतुब ना, तो गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमा रहे हैं कि और वो जात जो वही की हमने तुम्हारी तरफ से किताब, तो गोया के ये किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है, किताबों में से भेजी है, हुवल हक, वो हक है। तो गोया के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब मिली, और वो किताब का नाम क्या है, कुरान मजीद। तो कुरान मजीद क्या है, हुवल हक, हक है, मुसद्दकन तस्दीक करती है, लिमा बैना यदैही, उसकी जो के आपके दोनों हाथों के आगे है, जो दरमियान है, और दरमियान क्या था, तुरात इंजील, जो पहली कुतब थी वो उनकी तस्दीक करने वाली है। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह बे इबादही, अपने बंदों पर, लखबीरुम बसीर, वो अपने बंदों के हाल से बाखबर भी है और बसीर, हर चीज पर निगाह रखने वाला है। तो इसके मानी क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि आपके पास जो किताब भेजी गई है, नंबर 1 हमने भेजी, हमने वही की, नंबर 2 वो हक है, नंबर 3 अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है। तो इसका मतलब यह है कि कुरान अल्लाह की नाजिल करदा किताब है, और आपको पता है तुरात और इंजील में पेशीन गोई थी कि कुरान मजीद आएगा, उन्होंने भी इसकी जो है तायीद की और इसके बारे में खबर दी, और कुरान मजीद ने भी उनकी जो है वो तस्दीक की और तायीद की। और खबीर और बसीर के मानी क्या है कि अल्लाह ने किताब को नाजिल किया, और अल्लाह ने जो किताब को नाजिल किया, क्यों नाजिल किया, अल्लाह को खूब पता है इस बात का कि पिछली किताबें जो है ना वो तगैयर और तबदुल का शिकार हो गई, अब वो हदायत के काबिल नहीं रही। इन्नल्लाह बे इबादही ला खबीरुम बसीर, बेशक अल्लाह जो है अपने बंदों के हाल से वाकिफ है, इस क्योंकि अल्लाह इल्म और खबर रखने वाला है ना, ये उसके खबर का नतीजा है कि उसने किताब को नाजिल कर दिया, जरूरत ही नई किताब की, इसलिए नई किताब अल्लाह ताला ने भेजी। सुम्मा, फिर सुम्मा जो है फिर, यानी जब तगैयर तबदुल हो गया और अहले किताब ने उसमें तब्दीली कर दी, औरसनल किताबा, तो हमने वारिस बना दिया किताब का, अल्लज़ीना, उन लोगों को। अब यहाँ पे वारिस से कौन मुराद है, यानी बनी इसराइल से विरासत को ले लिया, उनको माजूल कर दिया, और किसको विरासत दी, बनी इस्माइल को, उम्मत मोहम्मदी को। इसकी दलील आप दीजिए, पीछे पढ़ चुकी हैं, वकजालिका, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ تو کتاب کا وارث ہم نے بنی اسماعیل کو بنا دیا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ زینا, یہ وہ لوگ ہیں. استفینا, ہم نے چن لیا ان کو, من عبادنا, اپنے بندوں میں سے. اور چننے کے لیے قرآن میں بہت سے لفظ ہیں, سواد, فا, وو. کون سا چننا ہے؟ پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنا پر چننا. تو پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنا پر بنی اسماعیل کو اللہ نے چن لیا, من عبادنا, اپنے بندوں میں سے. اور یہ کون سے بندے؟ یعنی جو امی تھے عرب کے, ان کو جو ہے وہ اللہ نے امت وسط بنا دیا. اب اس کی یہ جو امت وسط ہے, پھر یعنی گویا کہ جو مسلمان ہیں ان کی بھی تین قسمیں بن گئیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ایک قسم ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. دوسرے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد, دوسرے وہ ہیں جو بیچ کی راس ہے, جو درمیانی چال چلنے والے ہیں. تیسرے کون ہیں؟ وَمِنْهُمْ سَابِقُن, جو سبقت لے جانے والے ہیں. کس میں؟ بِالْخَيْرَاتِ, خیر کی جمع خیرات ہے, نیکیاں مراد ہیں, نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. اور خود ہی نہیں, بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کی تک, اللہ کی اجازت سے. یہ قید ہے, شرط کیا ہے؟ اللہ کی اجازت سے وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, یہ ہے بہت بڑا فضل. تو مسلمان سب ایک طرح کے نہیں ہیں, کلمہ ایک پڑھتے ہیں, پانی ایک ہے, زمین میں چیزیں مختلف پیدا ہوتی ہیں, مٹی ایک ہے نا, انسان مختلف رنگ کے پیدا ہوتے ہیں, پہاڑ کا پتھر اور اس کی خاصیت اصل اس کی ایک ہے, رنگ مختلف ہے, کچھ سخت ہے پہاڑ بھی, کچھ نرم ہے پہاڑ بھی. تو کلمہ ایک پڑھ کر مسلمان سب ایک طرح کے نہیں ہیں, تین حصوں میں تقسیم ہو گئے, تین ان کے درجے ہیں. نمبر ایک, اپنے نفس پر ظلم کرنے والے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, رسول کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں, اور اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, لیکن ہیں گناہگار, مجرم ہیں, باغی نہیں ہیں, کمزور ایمان والے ہیں, منافق ہیں. ان کے امروں میں, عملوں میں, ان کے دل اور دماغ میں کفر پایا جاتا ہے, یعنی صریحاً کافر نہیں ہیں جیسے مکہ کے کافر تھے, لیکن کہ ظالم لنفسی, شرک کرنے والے ہیں, منافقت کرنے والے ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, اور یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. دوسرے کون سے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد, اور آپ کو پتا ہے قاف سواد دال اس کے معنی ہوتے ہیں درمیان میں, یعنی درمیان سے مراد یہ نہیں اعتدال نہیں, جیسے عملی زندگی میں بعض لوگ معتدل ہوتے ہیں, یہ وہ مراد نہیں ہے درمیان, بلکہ اس کے معنی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ واجبات شریعہ کو تو ادا کرتے ہیں اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کام کرنے چاہیے وہ نہیں کرتے اور پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں بیچ کی راس, یعنی جو وراثت کا حق کم و بیش ادا کرتے ہیں, پوری طرح نہیں ادا کرتے, فرما برداری بھی کرتے ہیں, خطا کاری بھی کرتے ہیں. انہوں نے نفس کی لگام کو ظالمین کی طرح بالکل بے لگام تو نہیں چھوڑا, لیکن اللہ کی اطاعت کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن نفس کی باغیں ڈھیلی بھی چھوڑ دیتے ہیں. کبھی نمازیں پڑھی, کبھی نہ پڑھی, کبھی زندگی میں اچھے کام کیے, کبھی برے کام کیے, کبھی گناہ کیے, کبھی اچھائیاں کی, ہے نا. تو ان کی زندگی اچھے اور برے دونوں اعمال کا مجموعہ ہے. تیسری قسم ہے وَمِنْهُمْ, اور انہی میں سے, یہ جو تھے نا استفینا اور اورثنا, یہ ان میں سے پھر تین قسمیں بن گئی ہیں نا. تیسری قسم ہے سابقن, یہ اسم فاعل ہے, سابق. سابق جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ سابق سبقت لے جانے والا, آگے بڑھنے والا. تو سابقن سے مراد جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سبقت لے جانے والے ہیں. اور سبقت لے جانے والے کون لوگ ہیں؟ بالخیراتی, خیرات میں, نیکیوں میں, ایک نیکی نہیں ہر طرح کی نیکیاں. گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کتاب کے اصل وارث ہیں, صفحے اول کے لوگ, وراثت کا حق ادا کرنے والے, قرآن کی اطاعت میں پیش پیش, سنت کا حق ادا کرنے والے, اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے میں آگے آگے، دین حق کی خاطر قربانیاں دینے میں پیش پیش، بھلائی کے ہر کام میں پیش پیش، یہ رخصت کی راہوں پہ نہیں چلتے، عزیمت کی راہ پہ چلتے ہیں۔ دین کے معاملے میں رخصت پر نہیں چلتے، عزیمت پہ چلتے ہیں۔ دانستہ گناہ نہیں کرتے، نادانستگی میں ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی متنبہ کیا جائے تو پیشانیاں شرم سے عرق آلود ہو جاتی ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، گویا کہ اینڈ لیس ایفرٹس کرنے والے، اٹموس کوشش کرنے والے، پرفیکشن چاہنے والے، ہر حال میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ ایمان تو بعد میں لائے، ساری زندگی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے۔ عبداللہ بن مسعود ساری زندگی حسرت ہی کرتے رہے، فلاں کی طرح کاش کہ میں ہو جاتا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ ذکر کر رہے تھے اور پھر ان کا مذاق اڑا کر ہنسنے لگے، کیسے؟ اصل میں ان کی ٹانگیں بڑی کمزور تھی، بڑی کمزور ان کی ٹانگیں تھی، پتلا ان کا جسا تھا، تو بات کر رہے تھے کہ بڑی پتلی ٹانگیں ہیں، بگلے کی ٹانگیں یا اس طرح نا بہت۔ تو پھر اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا اس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن مسعود کی نیکیوں کو ایک بلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں احد پہاڑ رکھ دیا جائے تو ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور احد پہاڑ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ تم عبداللہ بن مسعود کی بات کرتے ہو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو ساری زندگی صحابہ نے نیکیوں میں سبقت لے جائی۔ تو اب میرا اور آپ کا یہ کام بنتا ہے، ہوم ورک یہ ہے، آپ خود اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں کہ میرا شمار کون سے گروہ میں ہے، کتنی دفعہ ہم سبقت لے جانے والے بنتے ہیں، کتنی دفعہ ہم درمیان میں رہتے ہیں، اور کتنی دفعہ ہم جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں۔ اور ہماری زندگی کے جتنے بھی سال گزرے، تو آپ ان سالوں کو، آپ اس وقت کو، آپ ان گھنٹوں کو تقسیم کریں کہ ہے کوئی ایسی نیکی کہ جس میں میں بھی سبقت لے کے گئی ہوں، کوئی نیکی، اور ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی نیکی میرے اور آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، اور اگر میں اور آپ وہ دروازہ نہیں کھولتے نا، وہ نیکی دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، اس کے دل کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، اور وہ اس کو خوش آمدید کہتا ہے تو وہ سابقم بالخیرات باذن اللہ بن جاتا ہے۔ اور یہ سبقت لے جانے والے کون لوگ ہیں، یہ حدیث آپ یاد کر سکتی ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ بہت سے حوالوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے، اور جو بیچ کی راس میں رہے ہیں ان سے محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو محشر کے پورے طویل عرصے میں روک لیے جائیں گے، پھر انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ذالک ھو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اور یہ جو ہے نا ذالک ھو الفضل الکبیر، اس کے بارے میں بھی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں، اور ذالک ھو الفضل الکبیر کے دو معنی کیا ہیں؟ ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ تینوں گروہوں کے باروں میں ہے یہ، کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس سے محاسبہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا محاسبہ کیا گیا وہ تو مارا گیا، اور وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حسبنا حساب یسیرا۔ اور میں تو اکثر اس بات سے سوچتی ہوں کہ دنیا میں اپنے جیسے انسان اگر ہمارا محاسبہ کرتے ہیں، ہمارے اندر تو اتنا دم خم نہیں ہے کہ ان کی باتوں کا جواب دیں۔ بعض اوقات آپ سچے ہوتے ہیں نا، لیکن آپ ان کی باتوں کا جواب نہیں دے پاتے نا، آپ اتنے تیز ترار نہیں ہیں، آپ کی یاداشت اتنی اچھی نہیں ہے، آپ جواب نہیں دے پاتے، اور جھوٹا سچا ہو جاتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا بہت دفعہ کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر نظر آنے والی چیز سونا تو نہیں ہوتی، کھوٹ ہوتی ہے اس میں، لیکن محاسبہ اس کا ہو جاتا ہے جو سچا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے نا، اور جس کا محاسبہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سچا، لیکن اس کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ اس پر الزام لگا دیا جاتا ہے نا۔ تو محاسبہ جو ہے، میں تو کہتی ہوں اگر آپ کے پاس $200 مہینے کے ہوتے ہیں جس کا آپ نے حساب دینا ہوتا ہے اپنے شوہر کو، بچے ہیں تو والدین کو، اگر آپ حساب دینا چاہیں तो मुश्किल होता है, लिख लिख कर रखे ये इतना कहाँ हिसाब हो सकता है। और जिनको हिसाब देना पड़ता है, बाद ऐसी औरतें भी हैं, एक एक डॉलर का उनको अपने घर में हिसाब देना पड़ता है, और उनको देखकर जो है फिर शुक्राने के एहसास दिल में पैदा होते हैं। एक एक चीज का हिसाब, बाज को अपने वक्त का हिसाब देना होता है, कहाँ गई और क्यों गई और कहाँ आई। और एक औरत ये कह रही थी कि बहुत परेशान थी, और कह रही थी कि वो गई दोस्त के साथ, वापस आई तो मियाँ ने कहा कि मुझे क्या पता तुम किसके साथ गई थी। और इसी तरह एक औरत के बारे में मियाँ ने कहा कि पता नहीं किसका फोन तुम्हारे पास आया था, है ना। तो बहुत सी ऐसी बातें कि इंसान बहुत सी बातों का हिसाब नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, हम बहुत कमजोर हैं। तो जिनका हिसाब लिया गया वो मारा गया। तो आइए मैं और आप नेकियों में सबकत ले जाने वाले बने, और फिर जो जुल्म करने वाले हैं हर कलमा गो जन्नत में दाखिल होगा, ऐसी हदीस भी मिलती है ना। तो लेकिन अल्लाह की आग जो दुनिया की आग से कितने दर्जे ज्यादा, 69 दर्जे, 69 दर्जे ज्यादा है। और दुनिया की आग आप देखिए, आप जरा सी चीजों को उठाती है, मेरे ऊपर तो हर वक्त ना निशान ही बने रहते हैं, हाथों पे और बाजू पे। ओवन का इस्तेमाल किया है और चीजों को उठाया तो कभी कहीं कभी कहीं, और फिर वो जब जलता है हाथ तो एहसास होता है, पानी के नीचे आप रखते हैं, कभी बर्फ लगाते हैं, कभी टूथपेस्ट और कभी कुछ चीज लगाते हैं ताकि जो है आपकी जलन दूर हो। तो वो तो 69 दर्जे ज्यादा है, तो फिर उसका हमारा क्या हाल होगा, हम क्या करेंगे ना। तो मुफस्सरीन की एक राय ये है, जालिका हुवल फजलुल कबीर, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो ये क्या है कि इस जुमले का ताल्लुक जो है कि नेकियों में सबकत ले जाना, और या फिर नेकियां करना और अल्लाह को राजी करना, ये क्या है। एक राय ये है कि ये तीनों ग्रोहों के बारे में है, और एक राय ये है कि ये सिर्फ साबिकीन के लिए है, कि ये अल्लाह का बड़ा फजल है जो सबकत ले जाता है, और याद रखें ये अल्लाह के इजन से है। और बाज लोग ये कहते हैं कि जालिका वल फजलुल कबीर का ताल्लुक सिर्फ तीन ग्रोहों से, पिछलों वारसों से नहीं है, अगली आयतों से है। और अगली आयतें क्या हैं, जन्नत तो अदनी यदखुलूनहा, कि हमेशा रहने वाली जन्नतों में इनको दाखिल किया जाएगा, क्योंकि जन्नतों में दाखिला भी तो अल्लाह ही का फजल है ना। हमारे अमाल की वजह से जन्नत नहीं मिलेगी, अल्लाह के फजल की वजह से जन्नत मिलेगी। और जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो तीन चीजों का जिक्र है इसमें भी, और तीन चीजें जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। युहल्लौना फीहा मिन असाविरा, वहां इनको पहनाए जाएंगे सोने के कंगन, क्योंकि दुनिया में जो बादशाह होते थे तो क्या करते थे, सोने के कंगन पहनते थे, जैसे नवाब, राज, महाराजे वगैरह। तो बताया जा रहा है कि जन्नत में उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। तो ये क्या है, ये जिक्र किया जा रहा है उनकी तकरीम की तरफ, ये तकरीम पर दलाल कर रही है ये आयतें। और ये जो जन्नत में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, आमतौर पे दुनिया में तो औरतें पहनती हैं ना सोना, लेकिन मर्दों को भी वहां पे पहनाया जाएगा। और ये सोने के कंगन, मिन असाविरा जहाबिन, सोने के कंगन होंगे, वलूलुआ, और मोतियों के कंगन होंगे, यानी मोती भी उनके उसके अंदर जो है हीरे जवाहरात जड़े हुए होंगे। वह लिबास और मोरन का लिबास होगा, फीहा उस जन्नत में, हरीर, नरमो नाजुक, बड़ा मुलायम लिबास होगा। ऐशो इशरत की जिसके पास इंतहा होती है वही रेशमी लिबास पहनता, जैसे नवाब, राजे, महराजे पहनते थे। और एक बात याद रखिएगा कि सोना और रेशम ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से मर्दों पर हराम कर दिए गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मर्द ने दुनिया में रेशमी कपड़ा पहना वो आखिरत में नहीं पहन सकेगा। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, खा वो दुल्हा ही क्यों ना हो, दुल्हे के लिए भी सिल्क या रेशम जायज नहीं है। इसी तरह अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की रवायत है, दुनिया में रेशमी लिबास पहनने वाला मर्द आखरत में इससे महरूम रहेगा, अगर जो जन्नत में चला भी जाए। अच्छा, फिर इसके बाद हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह से सुना, आपने फरमाया रेशमी लिबास न पहनो, और सोने चांदी के बर्तनों में पानी न पियो, और ना उनकी प्लेट में खाने और ना उनकी प्लेट खाने में इस्तेमाल करो, क्योंकि ये चीजें दुनिया में कुफार के लिए हैं और आखरत में तुम्हारे लिए। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। और अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत के सरों पर ताज मोतियों से मुरस्सा होंगे, इनके अदना मोती की रोशनी ऐसी होगी कि मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया को रोशन कर देगी, इतने खूबसूरत उनको ताज पहनाए जाएंगे। तो अच्छा, जैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हे को खास तौर पे सोने की अंगूठी दी जाती है, तो हराम है मर्द के लिए सोना पहनना, खा वो दूल्हा ही क्यों ना बने। और यहाँ पे बाज लोग सोने की चेने भी अपने बेटों को बच्चों को पहना देते हैं, बाज मर्दों ने भी पहनी होती हैं। तो मर्दों के लिए दुनिया में सोना हराम है और रेशम हराम है, और जन्नत में ये नेमते जो है वो दी जाएंगी, सोना भी और मोती भी, और उनका लिबास रेशम का होगा, औरतों का भी और मर्दों का भी। और एक बात आप याद रखें कि ये वो तीन चीजें जिनसे इंसान मोहब्बत करता है, दुनिया में अगर नहीं भी हैं तो क्या है, अल्लाह आखरत में इसको देगा। वकालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और वो पुकार उठेंगे तारीफ उस अल्लाह की जिसने अज़हब अन्नल हज़न, हमसे दूर कर दिया हजन को, गम को। तो खौफ किसका होता है? आने वाले वक्त का। और हजन किसका होता है? माजी का। अच्छा, अब फिर ये हजन कौन सा है जो दूर कर दिया, यानी जो नेक लोग थे उनको ये गम था, इस बात का उनको गम था, हजन था कि पता नहीं हमारी मौत कैसे आएगी, कलमा पे आएगी कि नहीं, पता नहीं हमारी जान कैसे निकलेगी, तो ईद पर निकलेगी कि नहीं, मैं मुसलमान हूंगा कि नहीं। और सारी जिंदगी है ना, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मौत का वक्त था और शैतान कहने लगा कि अब तो तुम बख्शे गए, अब तो तुम मेरे से दूर निकल गए। तो उन्होंने कहा ला बोदा ला बोदा, अभी नहीं अभी नहीं। शैतान ने कहा क्यों, अब तो आखिरी वक्त है। कहा कि जब तक मैं मर ना जाऊं, क्योंकि आखिरी सांस में भी अगर वो किबर में मुब्तला हो जाते कि मेरा तो बख्शा गया, तो फिर है ना। तो गम इस चीज का, मौत किस पे आएगी, कब्र में क्या होगा, इस चीज का खौफ है ना, होगा क्या, गम इस चीज का है। फिर ये कि कब्रों से निकलेंगे तो क्या हाल होगा, हशर के मैदान में क्या होगा, नामा अमाल अमालनामे तोले जाएंगे, मिजान में रखे जाएंगे, फिर पता नहीं क्या हाल होगा। यौमा यफिरुल मरु मिन अखी है, इतना सख्त है वो दिन कि रिश्तेदार भी पहचानेंगे नहीं। फिर इस बात का कि नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर ये कि अब जन्नत में दर्जा कौन सा मिलेगा, रसूल अल्लाह का साथ नसीब होगा क्या, उनको देख सकेंगे क्या, अल्लाह का दीदार होगा। तो ये सारी बातें, अब वो लोग पुकार उठेंगे कि शुक्र उस खुदा का जिसने हमसे गम को दूर कर दिया, जहाबा नहीं है अजहबा, जिसने गम को दूर कर दिया। अन्नल हजन इन रब्बना लगफूरुन शकूर, बेशक हमारा रब बड़ा माफ करने वाला है और कदरदान है। सारे कसूर माफ कर दिए, अमल की थोड़ी सी पूंजी लेकर आए थे, इसने ऐसी कदर की कि जन्नत उसके बदले में अता कर दी। और हमारा रब जो है क्या है, हमारा रब गफूर भी है और हमारा रब शुकूर भी है, बख्शने वाला भी है और हमारी नेकियों पर कदरदान भी है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और आप देखें, आपको मसलन आपके घर मेहमान आने हैं, आपने पाकिस्तान सफर पे जाना है, आप सामान पैक कर रही हैं, आपकी एक ही फिक्र होती है, पहले तो शॉपिंग और पीछे खाने बना के आप फ्रीज करती हैं, सारी सेटिंग सारी प्लानिंग करती हैं, टिकट आ जाए फिर वो प्लानिंग करती हैं। फिर दूसरी फिक्र क्या होती है, एयरपोर्ट पे खैरियत से जहाज में सवार हो जाऊं, सामान ज्यादा ना निकले। एक औरत अमेरिका से हमेशा जब सफर करती है जरूर फोन करके कहती है, दुआ करना बाजी मुझे कोई परेशानी ना हो सफर में, मेरे सामान का मसला ना हो, बड़े ये वो चीजें दी हैं। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं शुक्र है अल्लाह का। आप जरा कभी अंदाजा करें, आप जहाज में बैठी हैं, सामान चला गया, आप कहती है शुक्र है सफर शुरू हुआ। फिर उसके बाद कहती है अब अल्लाह करे बस खैरियत से मैं घर पहुंच जाऊं, खैर खैरियत से कोई मसला ना हो। फिर आप वहां पहुंचती हैं, फिर आप कैसा शुक्र अदा करती हैं। फिर उसके बाद कहती हैं आ तो गई हूं, कब अल्लाह मुझे अपने बच्चों में खैरियत से ले जाएगा। फिर आप कहती हैं शुक्र है अल्लाह का, खैरियत से अल्लाह ताला मुझे वापस ले आया, अब यहाँ पे कोई नाराज ना हो, तोहफे लाई हूं, लाई तो बहुत हूं, बस अल्लाह खुश ना, अल्लाह करे मेरे रिश्तेदार मुझसे खुश हो जाए। एक औरत बेचारी कहने लगी कि बड़ी शॉपिंग करती थी, तोहफे तहाइफ लेके जाती थी, तो मेरे रिश्तेदार दोस्त अहबाब कहते थे कि इससे अच्छा इतने पैसों में तो यहाँ मिल जाता है। पहले कहते हैं कि पसंद नहीं आता, फिर आप बताते हैं कि इतने पैसों का, कहते इससे अच्छा तो यहाँ मिल जाता है। फिर मैं कहती कि मैंने कहा अच्छा आप पैसे लेके नहीं जाने हैं, इनको मैंने खरीद कर कुछ नहीं देना। कहती फिर जाके जब पैसे दिए तो फिर वो लोग कहने लगे कि लू पैसों से तो हम यहाँ भी खरीद सकते हैं, हमें कौन सी मसला है, यहाँ चीजें नहीं हम खरीद सकते। एक वहां की चीजों का एक तोहफा होता है, एक यादगार होती है कि वहां की खुशबू होती है, तो आप वहां से वो नहीं लाए। तो असल बात क्या है कि फिर आप जाते हैं खुश करने के लिए, आपसे पीछे कोई नाराज भी ना हो, सब राजी खुश हो। और बाज़ का कभी जिंदगी में ऐसा होता है वापस आते हो कहते काश के ना गई होती ना, फला नाराज हो गया, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो बहरहाल इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। फिर इसके बाद तीन बातें और फरमाई, और ये जो बातें हैं वो क्या बातें हैं, अल्लज़ी अहल्लना दारुल मुकामति मिन फ़ज़लिही, कि वो जात जिसने हलाल कर दिया, ठहरा दिया। अहल्ला का मतलब क्या होता है, सामान, मुसाफिर का सामान को खोलना, गिरा का खोलना, मुसाफिर का सामान को खोलना और एक जगह मुकीम हो जाना, कि जिसने हमें ठहरा दिया, वो अल्लाह जिसने हमें ठहरा दिया, दारुल मुकामती, ये मजदर मीमी है, मुकामा मकाम ठहरने की जगह है, तो यहां मुराद है अबदी क्याम का, कि जिसने दारुल मकाम में हमें ठहरा दिया, मिन फजल ही, अपने फजल से। मेरे अमल ऐसे नहीं थे कि मैं दारुल मकाम में पहुंच जाता, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस जगह पहुंचा दिया, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहू मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे देता है। तो एक बात क्या है कि अल्लाह ने अपने फजल से ये जो दुनिया का सफर था मैंने उसको तय किया, फिर मौत, फिर कब्र की जिंदगी, फिर मैदान हशर का सफर, फिर पुल से रात का सफर, सारे सफर तय करके शुक्र है अल्लाह का मैं उस जगह पहुंच गया जो दारुल मुकामा है, जहां कयाम करने अब कोई डर नहीं है कि होगा क्या। दूसरी बात क्या है, ला यमसूना फीहा नसबुन, यहां पे हमें जो है अब कोई नसब नहीं पहुंचेगा। मस का मतलब क्या होता है, पहुंचना, टच करना, मस करना, है ना। अब हमें नहीं पहुंचेगी कोई भी नसब, नसब ज़विल अज़दाद में से है। एक इसके मानी होते हैं स्टेबल होना, है ना, किसी चीज को गाड़ दिया जाए, जैसे अंसाब वो बुतों को गाड़ देते थे, और दूसरे इसके मानी होते हैं लुढ़कना, लुढ़कना, यानी स्टेबल होना भी मानी है और अनस्टेबल होना भी, और यहां पे क्या है कि अनस्टेबल होना, कि अब वहां पे उनको जो है अब वो वहां पे लुढ़केंगे नहीं, वहां पे कोई थकन नहीं उनको होगी, अब कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तीसरी बात क्या है, वला यमसूना फीहा, और इस दारुल मकामा में हमें नहीं पहुंचेगा कोई लुगूब, लुगूब इसम मस्दर है, ताकीद के लिए आया है, लाम गैम बा, इसके मानिए थकना, थकावट की वजह से कमजोर होना। तो दुनिया में इंसान जब काम करता है तो थक जाता है, सुबह से लेकर शाम तक थक जाते हैं। बाज़ुकात आप चाहती हैं आप और खिदमत करें, आप ये चाहती हैं साबिकुन अल खैरात, नेकियों में सबकत ले जाए, और सबकत ले जाने वाला ऐसे नहीं करता कि कोई मेरे साथ चल रहा है तो मैं चलूं, कोई भाग रहा है तो मैं भागूं, और वो भागते वक्त ना दाएं देखता है ना भाई, भागता चला जाता है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और सहाबा कराम जो साबिकून अल अव्वलून बने, उन्होंने कभी नहीं देखा था कि बाकी कुछ कर रहे हैं कि नहीं, बस दाएं बाएं सब कुछ छोड़कर आगे ही बढ़ने वाले थे। तो अब क्या है कि अब इनको कोई लुगूब नहीं है, काम या मेहनत की ज्यादती की वजह से वो थक नहीं जाएंगे, तो क्या है अब इनको कोई थकान नहीं मिलेगी, हर तरह की थकन, यानी दुनिया में एक तो मेहनत है ना, आप मेहनत करते हैं थकते नहीं है, तो अब वहां पे नसब कोई नहीं है, कोई ऐसी मेहनत नहीं है। फन सब भी आपने कुरान में पढ़ा है ना कि फन सब वाइला रब्बी का फन सब, अब क्या है कि अब मेहनतों तकलीफों का खात्मा हो चुका, और अब ऐसा कोई काम नहीं है कि फारिग तो हो गए हैं लेकिन थकन की वजह से तकलीफ हो रही है। आप दिन भर काम करती हैं, काम सारे बड़े अच्छे कर दिए, खुश बहुत है, कभी आप होती हैं कभी मैं होती हूं, लेकिन जिस्म का रुआ रुआ दुखता है, रेशा रेशा जिस्म का दुखता है, तो थकन की जो तकलीफ है बहुत सताती है। वला यमसूना फिया लगूब, अब वहां पे जो है कोई थकान नहीं है। तो ये तीन तरह की नियमतों का जिक्र है, और अल्लाह ताला वजअलना मिनहुम, अल्लाह मुझे और आपको लोगों में शामिल कर दे। अब ये तो थे एक किस्म के लोग जो जन्नत में जाने वाले हैं। अब दूसरी किस्म क्या है, वल्लज़ीन कफरू लहुम नारु जहन्नम, दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया तो उनके लिए जहन्नुम की आग, इनकार करने वाले हैं और जहन्नुम की आग है। ला युक्दा अलैहिम, और नहीं फैसला किया जाएगा इनका, फैसला करके इनका कजिया नहीं चुकाया जाएगा, इनका किस्सा नहीं पाक कर दिया जाएगा। फयमूतू, कि वो मर जाए। अब ये नहीं है कि अब जब जहन्नुम में उनको डाल दिया जाएगा कि अब उनका फैसला करके किस्सा चुका दिया जाए और उनको मौत ही आ जाए। वला युखफ्फु अनहुम मिन अज़ाबिहा, और ना ही उनसे जो उनका अजाब है उसमें कुछ कमी की जाएगी, तो उनका अजाब जो है वो भी उनका जो है वो कम नहीं किया जाएगा। तो आप देख लीजिए कि अब यहां पर जो है तीन तरह से उनका तीन उनके जो है वो तीन बातें बताई जा रही हैं काफरों के बारे में। नंबर एक, उनके लिए जहन्नुम की आग है, और आप याद रखिएगा قرآن میں اللہ نے نار کے لیے بھی اپنی طرف نسبت کی ہے، نار اللہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. تو جہنم کی آگ کافروں کے لیے اللہ نے خود بھڑکائی ہے ڈائریکٹ اپنی نگرانی میں. نمبر دو، وہ تمنا کریں گے ان کو موت آ جائے، لیکن موت نہیں اب ان کے لیے آئے گی. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب موت نہیں آئے گی جو ان کا قضیہ پاک کر دے. اور تیسری بات کیا ہے کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے اور بڑی ہی جو ہے وہ تکلیف کی بات ہے کہ اب عذاب میں جو ہے کوئی کمی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. پھر ہوگا کیا؟ کذالک نجزی کل کفور، کذالک اسی طرح. پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ کذالک اسی طرح، ہے نا. اب یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ کذالک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، نجزی بدلہ دیتے ہیں، کلا کفور ہر کفر کرنے والے کو. اور یہاں پہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعول کے وزن پر ہے. جیسے پیچھے شکور آیا ہے نا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ کفر کرنے والے، جو کفر کرنے والے ہیں ان کو ہم ایسا ہی بدلہ جو ہے وہ دیتے ہیں. وہم، اور وہ لوگ، یسترخون فیہا. اب آپ دیکھیں کہ جہنم میں جب ان پر عذاب ہے، جہنم میں اللہ کی بھڑکائی بھی آگ ہے اور عذاب ان کا کم نہیں کیا جا رہا، تو اب جہنم کے لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. جیسے کسی کو کوئی بہت شدید تکلیف ہو، سواد راخا، اور وہ فریاد کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ کوئی اس کی مدد کر دے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، فریادیں کریں گے، روئیں گے، رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، ہچکیاں بن جائیں گی. اور وہ کہیں گے کیا؟ فیہا یعنی جہنم کے اندر، اس جہنم میں، نارو جہنم میں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہم کو، نکال ہم کو. کہاں سے نکال؟ اس جہنم سے نکال دے. نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے صالح، غیر الذی کنا نعمل، اس سے ہٹ کر، غیرہ یعنی ان گناہوں کو جو ہم کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ کر. اللہ جی، وہ عمل، کننا نامل، جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے. اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف عمل کریں جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے. کوئی طالب علم جو فیل ہو جائے اور کہے کہ کیا میک اپ ٹیسٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی مجرم جس کو زنجیروں میں جکڑ لیا جائے تو وہ کہے کہ کیا مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ پھر اس وقت جو ہے ان کو جواب دیا جائے گا، اولم، کیا نہیں، نعمرکم، ہم نے عمر دی تھی کم تم کو، ما، وہ عمر، یتذکر فیہ، جس میں تم جو تھے وہ نصیحت پکڑ لیتے. یتذکر فیہ، جس میں تم سبق لے لیتے. کون سبق لیتا؟ من تذکرا، جو کوئی بھی چاہتا تذکرہ تو نصیحت پکڑ سکتا تھا، عبرت حاصل کر سکتا تھا، سبق لے سکتا تھا. تو کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی؟ ما یتذکر فیہ، کہ جس میں جو سبق لینا چاہتا ہو اس عمر میں، من تذکر، جو اس میں نصیحت لینا چاہتا ہو تو اس میں نصیحت پکڑ سکتا تھا. وجاءکم النذیر، اور آئے تھے تمہارے پاس میرے ڈرانے والے، اور آئے تھے تمہارے پاس میرے انبیاء. تو نذیر سے مراد انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور مفسرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نذیر جو ہے اس سے مراد ہے یہ جو سفید بال نہیں ہے، یہ بھی اس سے مراد ہے. کیونکہ سفید بال جو ہیں جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت اکرمہ، امام جعفر باقر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ نذیر سے مراد بڑھاپے کے سفید بال ہیں. جب وہ ظاہر ہو جائیں تو انسان کو پکار پکار کر کہتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں کہ اب تیری رخصت کا وقت قریب آ گیا ہے. سفید بال بھی اللہ کی طرف سے نذیر ہیں، اور انبیاء اور علماء بھی. اچھا، اب یہ کتنی عمر ہے جس میں کوئی نصیحت پکڑ سکے؟ اس سلسلے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے 60 سال، ایک رائے ہے کہ اس سے مراد ہے 70 سال. تو 60 سال کی دلیل میں بخاری کی حدیث میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں کہ جس کو، جو شخص جو ہے वो 60 साल का हो जाए और फिर वो ना बदले, तो कोई उसके पास हुज्जत नहीं होगी जिसको अल्लाह के दरबार में पेश कर सके। और बाज लोग कहते हैं कि ये उम्र है 40 साल की, 40, 60, 70, 70 साल के बारे में मुस्नद अहमद की रवायत मिलती है। और बाज लोग ये कहते हैं कि इससे मुराद 40, 60, 70 नहीं, जितनी भी उम्र किसी को अल्लाह ताला ने दी थी, तो अगर वो चाहता तो उसमें जो है वो हदायत पा सकता था, दुनिया की सारी बातें वो समझता था, तो जो है उसने जो है वो फिर हदायत को क्यों ना कबूल किया, उसने कुरान से और अल्लाह के डराने वालों से क्यों ना जो है वो इबरत हासिल की। तो तज़क्कुर जो है इसका क्या मतलब है, इसके दो मानी हैं, एक है कि याद करना भी और दूसरा उसको दूसरे को बताना भी, बयान करना भी, है ना। तो ये तज़क्कुर जो है फिर इसके मानी क्या है कि इतनी उम्र तो थी कि अगर वो चाहता तो इसमें जो है वो क्या कर सकता था, इबरत हासिल कर सकता था, नसीहत हासिल कर सकता था। हजरत अबू हुरैरा और हजरत साल बिन साद साइदी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया कि जो शख्स कम उम्र पाए इसके लिए तो उजर का मौका है, मगर 60 साल और इससे ऊपर उम्र पाने के वाले के लिए कोई उजर नहीं है। ये बुखारी की रवायत है। फजूकू पस चखो, अब वो बोल रहे हैं लेकिन उनसे क्या कहा जा रहा है, फजूकू पस चखो, फमा लिस्वालिमीन मिन नसीर, ऐसे जालिमों के लिए अब कोई मददगार नहीं है। सूरत नबा में क्या है, फजूकू फलन नजीदकुम इल्ला अजाबा, फजूकू फलन नजीदहुम इल्ला अजाबा। तो वहां पे भी क्या है, फलन नजीदहुम इल्ला अजाबा, कि उनके लिए इजाफा नहीं किया जाएगा मगर अजाब में। अच्छा, ये जो आयत नंबर 37 है इस सिलसिले में तीन बातें आप याद रखें। पहली बात क्या है, मसलन यहां पे तो ये कहा गया ना कि वो ये कहेंगे कि हमें जो है क्या किया जाए कि अजाब से निकाल कर दुनिया में भेजा जाए ताकि हम अमले सवाले कर सकें। लेकिन कुरान में एक और जगह भी हमें मिलता है कि उस वक्त ये आरजू करेंगे कि हमें मौका दे दिया जाए ताकि हम ईमान लाएं, हम फिर ईमान लाएंगे, अमले सवाले तो बाद में होता है ना, तो उस वक्त वो ईमान लाने की तमन्ना करेंगे। और एक जगह हमें कुरान में ये मिलता है कि वो ये तमन्ना करेंगे कि हमें दुनिया में भेज दीजिए तो हम वैसे ही काम करेंगे जैसे दुनिया के लिए हम बहुत फरेफ्ता होते थे ना, तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो हैं हम अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला कहेंगे नहीं फिर तुम वही काम करने लगोगे जो दुनिया में कर रहे थे ना। तो असल बात क्या है कि दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जजा है। इन्नल्लाह आलिमु गैबि समावाती वलर्द, बेशक अल्लाह वो है जानने वाला है गैब पोशीदा का, और पोशीदा कौन सा, आसमानों का भी, असमावाती वलर्द, आसमानों और जमीन का। तो आसमान और जमीन से मुराद क्या है, पूरी दुनिया, पूरी कायनात है, इससे मुराद पूरी दुनिया है। तो अल्लाह ताला की जात जो है आसमान और जमीन पूरी दुनिया के बारे में इल्म रखने वाली है। तो आसमानों जमीन के अल्फाज बोलकर पूरे निजाम कायनात को लिया गया है, तो अल्लाह ताला पूरे कायनात के निजाम को जानने वाली है, उसका इल्म रखने वाली है। इन्नहू अलीमुम बिजातिस सुदूर, बेशक वो अल्लाह सीनों के छुपे हुए राज भी जानती है, जो कायनात के पूरे निजाम को चला रही है, अलीम है, खबीर है, इला है। और पीछे आप पढ़ चुकी बहुत सी बातें कि किस किस तरह की अल्लाह ताला ने जो है वो चीजें पैदा की हैं, और मिल्क उसी की है, बादशाही उसी की है, लेल और नहार का निजाम, सखर शमसा वल कमर, कुल्लु यजरी लि अजली मुसम्मन, सब उसी का है। तो इंसान जो कुछ करता है अमल भी अल्लाह जानता है, और जो सीनों के अंदर छुपा हुआ है वो भी अल्लाह जानता है। और क्या वही ना जानेगा जिसने इंसान को पैदा किया, अल्लाह सब कुछ जानता है। तो क्या करना चाहिए, कुफ्र करने की बजाय शुक्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए, साबिकूनुल अव्वलून में अपना नाम लिखवाइए, काश के वो मेरा और आपका सीना हो, वो मेरा और आपका धड़ हो। क्योंकि रही दुनिया की बात, तो मैं और आप दुनिया के मामले में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं, हमेशा रीस करते हैं और आगे जाते हैं। और रही आखिरत की बात, तो ना जाने क्यों हम पीछे रह जाते हैं। तो कुरान और हदीस की जितनी बातें मेरे और आपके सामने आई हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको पढ़ें, इनको समझें और इन पर अमल करें। और क्यों अमल करें? ताकि मेरा और आपका नाम जो है वो साबिकून अव्वलून में जो है वो शामिल किया जाए। और नेकी का हुसन क्या है? कि उसको फौरन कबूल किया जाए। नेकी का हुसन क्या है? कि उसको फौरन कबूल किया जाए। बुजुर्ग का कौल है, इल्म अमल को आवाज देता है, जवाब पाए तो ठहर जाता है वरना चल देता है। तो अगर ये इल्म जो मैंने और आपने हासिल किया है, मैं और आप ये चाहते हैं कि वो मेरे और आपके दिल की जीनत बन जाए, अमलों की रौनक बन जाए, अमलों का जेवर बन जाए, तो मुझे और आपको अपने दिलों की खेती की ईमान और सही अकीदे से आबियारी करनी होगी, हुस्ने जन रखना होगा, नेकियों में रश करना होगा, नेकियों में सबकत ले जाने की प्लानिंग करनी होगी, और अपने जो आमाल हैं और अपनी जो बातें हैं और अपने जो अमल हैं उनके अंदर भी उसने इखलाक और उसने किरदार के फल जो है वो काटने होंगे, उनको परवान चढ़ाना होगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता करे और हम सबसे राजी हो जाए।